ओम शांति, ओम शांति। आज प्यारे प्यारे बाबा ने हम बच्चों को बताया कि बाप रूहानी सर्जन है और बाबा बच्चों को ज्ञान का इंजेक्शन देते हैं। और दूसरी बात, बाबा ने बहुत प्यार से बच्चों को कहा है, कई बच्चे कहते हैं बाबा हमें योग सिखाओ, हमें योग कराओ। बाबा कहते हैं कभी भी लौकिक में बच्चा कभी अपने बाप को नहीं कहेगा कि मेरे को योग सिखाओ, वो स्वतः ही अपने बाप को याद करने लग पड़ता है। तो बाबा ने कहा ये ऐसा नहीं है कि बैठ करके योग लगाना है, चलते फिरते कर्म करते बाबा को याद करना है, बैठ करके भी याद करना है लेकिन चलते फिरते कर्म करते बाबा को याद करना है। दूसरी बात, बाबा ने कहा तुम बच्चे मैसेंजर भी हो और पैगंबर भी हो, क्योंकि तुम ही जाकर के विश्व के मालिक बनते हो, तुम्हें प्रजा बनानी है, प्रजा बनाएंगे तब तो विश्व के मालिक बनेंगे। अभी हम सुनते हैं प्यारे बाबा के महावाक्य। आज की तारीख है 7 फरवरी 2025। मुरली का मुख्य हेडिंग, मीठे बच्चे तुम्हें चलते फिरते याद में रहने का अभ्यास करना है। ज्ञान और योग यही मुख्य दो चीजें हैं, योग माना याद। मीठे बच्चे तुम्हें चलते फिरते याद में रहने का अभ्यास करना है, ज्ञान और योग यही दो मुख्य चीजें हैं, योग माना याद। आज का प्रश्न है अकलमंद। अब आप बता रहे अकलमंद बच्चों की निशानी क्या होगी। अकलमंद होशियार बच्चे कौन से बोल मुख से बोल नहीं सकते। इसका उत्तर है हमें योग सिखलाओ। ये बोल अकलमंद बच्चे बोल नहीं सकते। बाप को याद करना क्या सीखना होता है? बच्चा पैदा हुआ तो अपने माँ बाप को याद करने लग जाता है। तो बाबा कहते बाप को याद करना क्या सीखना होता है। ये पाठशाला है पढ़ने और पढ़ाने के लिए, ऐसे नहीं याद करने के लिए कोई खास बैठना है। तुम्हें कर्म करते बाप को याद करने का अभ्यास करना है। ओम शांति। अब रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप इस रथ द्वारा हमको समझा रहे, बाबा समझा रहे हैं, बच्चे भी समझ रहे हैं, समझाने वाला कौन है? शिव बाबा। इस रथ द्वारा बच्चे जानते हैं रूहानी बाप इस रथ द्वारा हमको समझा रहे हैं। अब जबकि बच्चे हैं तो बाप को व किसी बहन व भाई को कहना कि मुझे बाप को याद करना सिखलाओ, ये रॉन्ग हो जाता। देखो बाबा भी बता रहे हैं किसी को योग करना सिखलाओ, कई बार आते एक ही बात करते, सबको ठीक है लेकिन मेरा योग नहीं लगता है। तो एक ही बात बार बार करते, अरे बाबा है, बाबा को याद करना है, योग नहीं लगता, योग नहीं लगता। उसके लिए बाबा ने और ही सहज कर दिया, योग नहीं ये तो याद है। अब जबकि बच्चे हैं तो बाप को व किसी बहन व भाई को कहना कि मुझे बाप को याद करना सिखलाओ, ये रॉन्ग हो जाता है। तुम कोई छोटी बच्चियां हो क्या? छोटे बच्चों को भी कहो एक सेकंड में याद कर लेता है। तो बाबा कहते हैं तुम कोई छोटी बच्चियां तो नहीं हो, ये तो जानते हो मुख्य है रूह, वह तो है अविनाशी, शरीर है विनाशी। बड़ा तो रूह हुआ ना, आत्मा बड़ी है, शरीर तो विनाशी है। अज्ञान काल में ये ज्ञान किसको भी नहीं रहता कि हम आत्मा हैं, शरीर द्वारा बोलते हैं। हालांकि वो बोलेंगे आत्मा है, लेकिन ये पक्का नहीं रहता है कि हम आत्मा कर्म कर रही है, शरीर द्वारा बोल रहे, ये नहीं रहता है ना। तो बाबा कहते हैं अज्ञान काल में ये ज्ञान किसको नहीं रहता कि हम आत्मा हैं, शरीर द्वारा बोलते हैं, देह अभिमान में आकर बोलते हैं मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ। अभी तुम देही अभिमानी बने हो, जानते हो आत्मा कहती है मैं इस शरीर द्वारा बोलती हूँ, कर्म करती हूँ, आत्मा मेल है। कभी बाबा कहते हैं आत्मा मेल है, कभी बाबा कहते हैं आत्मा बोलती है, क्योंकि शरीर फीमेल का मिला है तो फिर आत्मा क्या बोलती, मैं कर्म करती हूँ। मेल का शरीर होता है तो आत्मा बोलती है मैं कर्म करता हूँ। तो वास्तव में आत्मा तो है ना, मेल ना फीमेल कुछ भी कहो, लेकिन आत्मा तो आत्मा ही है ना। तो बाबा कहते हैं आत्मा मेल है। बाप समझाते हैं ये बोल बहुत करके सुने जाते हैं, कौन से कि बाबा हमको योग कराओ, बाबा हमको योग कराओ। बाबा कहते हैं ये बोल हमेशा बहुत करके सुने जाते हैं, कहते हैं हमको योग में बिठाओ। सामने एक बैठते हैं इस ख्याल से कि हम भी बाबा की याद में बैठे और ये भी बैठे। बाबा ने सिस्टम बनाया था शुरू से कि जो स्टेज पर बैठ के योग करते हैं वो योग खुद भी बैठे और सामने वाले भी योग में बैठे। बाकी ऐसा नहीं है कि वो ही मेरे को योग कराए, करना तो सबको बाप को याद करना है ना। तो इस ख्याल से कि हम भी बाबा की याद में बैठे और ये भी बैठे। अब पाठशाला कोई इसके लिए तो नहीं है ना, बाबा कहते पाठशाला है कोई इसके लिए तो नहीं है ना। पाठशाला तो पढ़ाई के लिए है, बाकी ऐसे नहीं यहाँ बैठकर सिर्फ तुम्हें याद करना है। बाप ने तो समझाया है चलते फिरते उठते बैठते बाप को याद करो, इसके लिए खास बैठने की दरकार नहीं है। जैसे कोई कहते हैं राम राम कहो, क्या बिगड़ राम राम कहे याद नहीं कर सकते हैं? वो भी जो चलते फिरते राम राम करते हैं, बाबा कहते तुम बच्चे भी चलते फिरते बाबा को याद करो, तो क्या बिगड़ राम राम कहे याद नहीं कर सकते हैं? याद तो चलते फिरते कर सकते हैं। तुमको तो कर्म करते बाप को याद करना है। आशुक माशुक कोई खास बैठ करके एक दो को याद नहीं करते, वो तो कोई कहाँ होगा कोई कहाँ होगा, वो एक दो के शरीर को याद करते हैं। आशुक माशुक कोई खास बैठकर एक दो को याद नहीं करते हैं। काम काज धंधा आदि सब करना है, सब कुछ करते अपने माशुक को याद करते रहो। ऐसे नहीं कि उनको याद करने के लिए खास कहाँ जाकर बैठना है। ये बाबा क्यों बता रहे हैं, कई कई बच्चे ऐसे होते हैं उनको बस एक ही बात हो जाती, बस बैठ जाओ और सब काम काज छोड़ के बैठ जाए, थोड़ा टाइम बैठो काम करो अपने आप को चलाओ सब कुछ करो। ऐसा नहीं कि कर्म छोड़ करके बैठ जाना है, इसलिए बाबा बच्चों को पक्का कर रहे योग में भी बैठो याद में भी बैठो, कर्म भी करना है। ऐसे नहीं कि उनको याद करने के लिए खास कहाँ जाकर बैठना है। तुम बच्चे गीत व कविताएं आदि सुनाते हो तो बाबा कह देते हैं, अब बाबा किसी भी बात पर किसी को टिकने नहीं देते, एक बात पर टिक जाते हैं ना। बाबा के टाइम पर बच्चे कोई गीत कविता सुनाते थे तो बाबा उनको अप्रिशिएट करते थे, बहुत अच्छा किया, फिर दूसरा बच्चा तैयार हो जाता था मैं भी गाऊं। यहाँ भी ऐसे होता है कोई एक गीत गाएगा दूसरे दिन कोई और आएगा मैं भी गीत गाऊं, देखा देखी होती है ना। तो बाबा ने फिर क्या किया, जब बहुत इस बात में चले गए ना तो फिर बाबा ने क्या किया, बाबा कहते हैं तुम बच्चे गीत व कविताएं आदि सुनाते हो तो बाबा कह देते हैं ये भक्ति मार्ग के। अब बाबा पक्का कर दे कि उसके ऊपर डिपेंडेंट ना हो जाए। कहते भी हैं शांति देवा सो तो परमात्मा को याद करते हैं ना कि श्री कृष्ण को। ड्रामा अनुसार आत्मा अशांत हो पड़ी है तो बाप को पुकारती है, क्योंकि सुख शांति का सागर वह है। ये ज्ञान और योग मुख्य दो चीजें हैं। योग माना याद, उनको हठ योग बिल्कुल अलग है। योग माना ही बाबा के याद है, उनका हठ योग बिल्कुल अलग है। तुम्हारा है राजयोग, बाप को सिर्फ याद करना। हमारा योग क्या है? राजयोग, चलते फिरते केवल बाप को याद करना है। तुम्हारा है राजयोग, सिर्फ बाप को याद करना है। बाप द्वारा तुम बच्चे बाप को जानने से सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। तुमको तो सबसे बड़ी खुशी है। कौन सी खुशी है कौन बताएगा? बाबा कहते एक तो सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए, दूसरी सबसे बड़ी खुशी कौन सी है? कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। तो बाबा कहते हैं तुमको सबसे बड़ी खुशी तो ये है कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। भगवान का भी पहले पूरा परिचय होना चाहिए। ऐसे तो कभी नहीं जाना कि जैसे आत्मा स्टार है वैसे भगवान भी स्टार है। ये कभी भक्ति मार्ग में भी नहीं सोचा न सुना कि आत्मा तो स्टार है, वो कह देते हैं चमकता है अजब सितारा ब्रह्मकुटि में, लेकिन परमात्मा भी स्टार है ये किसी ने नहीं बताया है, ये बाबा ही आकर के बताते हैं। तो बाबा कहते ऐसे तो कभी नहीं जाना कि जैसे आत्मा स्टार है वैसे भगवान भी स्टार है। वह भी आत्मा है परंतु उनको परम आत्मा सुप्रीम सोल कहा जाता है। वह कभी पुनर्जन्म तो लेती नहीं। क्यों? सुप्रीम सोल है ना, पुनर्जन्म में आती है ना आत्मा पतित बनती, वो तो एवर प्योर है। वह तो कभी पुनर्जन्म लेते नहीं। ऐसे नहीं कि वह जन्म मरण में आते हैं, नहीं पुनर्जन्म भी नहीं लेते हैं। वह कभी पुनर्जन्म नहीं लेते, एक है कभी लिया कभी नहीं। बाबा कहते वह कभी पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। खुद आकर समझाते हैं कि मैं कैसे आता हूँ। त्रिमूर्ति का गायन भी भारत में है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र भी दिखाते हैं। शिव परमात्माएं नमे कहते हैं। उस ऊंच से ऊंच बाप को भूल गए हैं, सिर्फ त्रिमूर्ति का चित्र दे दिया। भक्ति में त्रिमूर्ति का चित्र बनाया ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर का है, लेकिन उसके ऊपर शिव बाबा को नहीं दिखाते। तो बाबा कहते त्रिमूर्ति का बना दिया है लेकिन परमात्मा को भूल गए हैं। ऊपर में शिव तो जरूर होना चाहिए, जिससे ये समझे कि इनका रचयिता शिव है। रचना से कभी वर्षा मिल नहीं सकता है। तुम जानते हो कि ब्रह्मा से भी कुछ भी वर्षा नहीं मिलता। अब शिव बाबा देखो डायरेक्ट बता रहे, ब्रह्मा के द्वारा मिलता है लेकिन ब्रह्मा नहीं देते हैं, देने वाला शिव बाबा है। तो बाबा भी बच्चों को पक्का करते हैं कि बुद्धि कहाँ जानी चाहिए, शिव बाबा के पास। तुम जानते हो कि ब्रह्मा से भी कुछ भी वर्षा मिल नहीं सकता है। तो बाबा हर बात पे बच्चों को आगे बढ़ाते पुरुषार्थ कराते रहते थे। तो बाबा बता रहे हैं विष्णु को तो हीरे जवाहरातों का ताज है, शिव बाबा द्वारा फिर पेनी से पाउंड बने हैं। अब बाबा विष्णु कैसे बना है? शिव बाबा द्वारा ही पेनी से पाउंड बने हैं। शिव का चित्र न होने से सारा खंडन हो जाता है। ऊंचते ऊंच है परम पिता परमात्मा और ये है उनकी रचना। अभी तुम बच्चों को बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है 21 जन्मों के लिए, भल वहाँ फिर भी समझते हैं। अब राज बता रहे वहाँ सतयुग के अंदर ये समझते हैं कि बाप का प्रॉपर्टी मिली है, परंतु मिली कहाँ से? यहाँ के पुरुषार्थ से। भल वहां फिर भी समझते हैं कि लौकिक बाप से वर्षा मिला है, वहां ये पता ही नहीं कि ये बेहद के बाप से पाई हुई प्रालब्ध है। ये तुमको अभी पता पड़ा, भविष्य में जो भी प्रालब्ध है वो अभी के पुरुषार्थ से है। तो बाबा कहते हैं ये तुमको अभी पता पड़ा है, अभी की कमाई वहाँ 21 जन्म चलती है, वहाँ ये मालूम ही नहीं रहता है। और क्या नहीं मालूम रहता है? इस ज्ञान का बिल्कुल पता नहीं रहता। आत्मा है लेकिन आगे क्या है, आत्मा कैसे चक्कर लगाती, क्या बाबा कहते, कुछ भी पता नहीं। इस ज्ञान का बिल्कुल पता नहीं रहता। ये ज्ञान ना तो देवताओं में है ना शूद्रों में रहता है, ये ज्ञान केवल ब्राह्मणों के पास। ये ज्ञान है ही तुम ब्राह्मणों में, ये है रूहानी ज्ञान, स्पिरिचुअल अर्थ भी नहीं जानते हैं। डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी कहते हैं, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी कहते हैं, दुनिया में देखो डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी कहेंगे। आजकल तो टू मच हो गया है, आजकल तो छोटे छोटे सब्जेक्ट के अंदर पता नहीं क्या क्या डॉक्टर की डिग्री दे देते हैं, एक कागज का पीस लेकर के आ जाते हैं, बाबा हमको डॉक्टर ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज बनाते हैं। लेकिन आजकल बुद्धि कहाँ चली जा रही है, कहाँ ना कहाँ सर्टिफिकेट लेने के लिए पुरुषार्थ करते रहते हैं। लेकिन जब से हम बाबा के बने, बाबा ने तो इतने सर्टिफिकेट दे दिए हैं, वो सर्टिफिकेट कागज का है, और बाबा तो हमको ऐसा रियल सर्टिफिकेट देते हैं जो भविष्य में हमारी कितनी प्रारब्ध हो जाती है। तो हम बाबा क्या बता रहे हैं, ये है रूहानी ज्ञान, स्पिरिचुअल अर्थ भी नहीं जानते हैं, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी कहते हैं। डॉक्टर ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज एक ही बाप है। अब बाबा भी क्या है, डॉक्टर ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज। बाप को सर्जन भी कहा जाता है, साधु सन्यासी आदि कोई सर्जन थोड़ी है, वो महामंडलेश्वर होंगे डॉक्टर और सर्जन है नहीं कहलाते, वो तो क्या कहलाते हैं, महामंडलेश्वर है, महात्माएं हैं, सब कुछ है, लेकिन सर्जन वो नहीं है। बाबा को कहते हैं सर्जन, साधु संत आदि कोई सर्जन थोड़ी है, वेद शास्त्र आदि पढ़ने वाले को कोई डॉक्टर थोड़ी कहेंगे। भल टाइटल देते हैं परंतु वास्तव में है रूहानी सर्जन एक ही बाप, जो रूह को इंजेक्शन लगाते हैं, वह है भक्ति। उनको कहना चाहिए डॉक्टर ऑफ भक्ति, वो भक्ति के स्पेशलिस्ट है, तो उनको कहेंगे डॉक्टर ऑफ भक्ति। और बाबा को क्या कहेंगे, डॉक्टर ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज। उनको कहना चाहिए डॉक्टर ऑफ भक्ति, अथवा शास्त्रों का ज्ञान देते हैं, उसे कुछ भी फायदा नहीं होता है। ज्ञान मिला, ये हुआ शास्त्रों में सारी कहानियां हैं, लेकिन हमें क्या करना है वो तो नहीं मालूम रहता ना, इसलिए बाबा को कहना पड़ता है उनसे फायदा कुछ नहीं होता है और ही नीचे गिरते जाते हैं। तुमको डॉक्टर कैसे कहेंगे, अब डॉक्टर दवा देता है, शफा देता है, तुमको बाबा कहते डॉक्टर कैसे कहेंगे, डॉक्टर तो फायदा पहुंचाते हैं। ये बाप तो है ही अविनाशी ज्ञान सर्जन, योग बल से तुम एवर हेल्दी बनते हो, ये तो तुम बच्चे जानते हो, बाहर वाले क्या जाने कि योग से कैसे एवर हेल्दी बनते हैं। बाबा की चीज सारा ज्ञान तुम बच्चे जानते, बाहर वाले को सुनाएंगे वो तो समझेंगे नहीं, ये तो तुम बच्चे जानते हो, बाहर वाले क्या जाने। उनको अविनाशी सर्जन कहा जाता है। आत्मों में जो विकारों की खाद पड़ी है उसे निकालना, पतित को पावन बनाकर सदगति देना, ये बाप में शक्ति है और किसी में नहीं है, केवल बाबा ही पावन बना सकते हैं, ये बाप में शक्ति है। ऑल माइटी पतित पावन एक ही फादर है, ऑल माइटी कोई भी मनुष्य को कह नहीं सकते हैं। तो बाप कौन सी शक्ति दिखाते हैं, बाबा कहते ऑल माइटी है लेकिन कौन सी शक्ति दिखाते, पतित को पावन बना देते, सदगति देते, दुनिया वाले तो क्या क्या समझते। तो बाबा कहते बाप कौन सी शक्ति दिखाते, सर्व को अपनी शक्ति से सदगति दे देते हैं, उनको कहेंगे डॉक्टर ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। ये तो ढेर के ढेर मनुष्य आज पूरे विश्व में चले जाओ, पता नहीं कितने लोगों को ये डॉक्टर की डिग्री मिली हुई। तो बाबा कहते डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी और डॉक्टर की डिग्री भी तो कितनी मिलती ही रहती है। तो बाबा बता रहे हैं कि डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी ये तो ढेर के ढेर मनुष्य हैं, स्पिरिचुअल डॉक्टर एक ही है। तो बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो और पवित्र बनो। मैं आया ही हूँ, किसके लिए आया हूँ? पवित्र दुनिया स्थापन करने। फिर तुम पतित क्यों बनते हो? बाबा के तो पुकारा भी है, मैं आया भी हूँ पवित्र दुनिया स्थापन करने के लिए, फिर तुम पतित क्यों बनते हो? पावन बनो, पतित मत बनो। बाबा कहते पावन बनो, पतित मत बनो। अब सभी आत्माओं को बाप का डायरेक्शन है, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो, बाल ब्रह्मचारी बनो, बाल ब्रह्मचारी बनो तो फिर पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बाबा इस बात पे बच्चों को विशेष ध्यान खिंचवाते, इतने जन्म जो पाप किए हैं अब मुझे याद करने से पाप भस्म हो जाएंगे। मूल वतन में तो पवित्र आत्माएं रहती हैं, पतित तो कोई जा नहीं सकते हैं। बुद्धि में ये तो याद रखना है बाबा हमको पढ़ाते। पहले बाबा ने कहा ना कौन सी खुशी होनी चाहिए कि हमको बाबा भगवान पढ़ाते, और अभी बाबा क्या कह रहे हैं कि बुद्धि में याद रहे कि बाबा हमको पढ़ाते हैं। स्टूडेंट्स ऐसे कहेंगे क्या कि हमको टीचर की याद सिखलाओ? अब दूसरी बात बाबा पक्का कर रहे हैं, कभी भी स्टूडेंट ये नहीं कहेगा कि हम टीचर को कैसे याद करें। उनको पता होता है ये टीचर आएगा, ये सब्जेक्ट पढ़ाएगा, उनको पहले से ही पता होता है। याद थोड़ी करते हैं, ऑटोमेटिकली याद रहती है। तो बाबा कह रहे हैं स्टूडेंट्स ऐसे कहेंगे क्या कि हमको टीचर की याद सिखलाओ? याद सिखलाने की क्या दरकार है? यहाँ संदली पर कोई बैठे ना बैठे तो कोई हर्जा नहीं। एक तो नियम बना हुआ कोई बैठ के योग कराए, कभी कभी कोई नहीं होता। तो बाबा कहते कोई हर्जा नहीं है तो बैठ के बाबा को याद करना है ना। संदली पर कोई बैठे ना बैठे तो भी हर्जा नहीं है, अपने बाप को याद करना है। तुम सारा दिन धंधे धोरी आदि में रहते तो भूल जाते हो, इसलिए यहाँ बिठाया जाता। फिर कई बच्चे कहे ना बाबा क्यों ऐसे कहते? बाबा कहते यहाँ क्यों बाबा कहते हैं थोड़ा टाइम इकट्ठे संगठित में योग करो? उसका कारण है कि सारा दिन कोई ना कोई कारोबार में व्यस्त रहते हैं, भूल जाते हैं, तो इसलिए बाबा को कहना पड़ता है कि इसलिए बिठाया जाता है। नहीं तो चलते फिरते बाबा को याद करना, दोनों का बैलेंस रखना, बैठने का भी बैलेंस, चलते फिरते कर्म करने का भी बैलेंस रखना है। तो बाबा कहते हैं तुम सारा दिन धंधे धोरी आदि में रहते हो तो भूल जाते हो, इसलिए यहाँ बिठाया जाता है। ये 10-15 मिनट भी याद रहे, तुम बच्चों को तो काम काज करते बाप के याद में रहने की आदत डालनी है। आधा क्लब के बाद माशुक मिलता है। अब कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा में जो खाज पड़ी है वह निकल जाएगी, तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। अब कहते हैं तो क्यों नहीं याद करना चाहिए? बाबा कहते तुम्हारी आत्मा में जो खाज पड़ी वो निकल जाएगी, विश्व के मालिक बन जाएंगे, तो फिर ऐसे बाप को क्यों नहीं याद करना चाहिए? तुम बच्चों को तो काम काज करते याद में रहने की आदत डालनी है। आधा क्लब बाद माशुक मिलता है। अब कहते हैं मुझे याद करो, तुम्हारी आत्मा से खाद निकल जाएगी और तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे, तो क्यों नहीं याद करना चाहिए? स्त्री का जब हथियाला बांधते, जब उसकी सगाई होती है ना, तो उनको कहते हैं पति तुम्हारा गुरु ईश्वर सब कुछ है, परंतु वह तो फिर भी मित्र संबंधी गुरु आदि बहुतों को याद करती है। आजकल उसको कह देंगे पति ईश्वर गुरु, लेकिन दुनिया में तो देखो ना क्या हाल हो रहा है, गुरु भी क्या ईश्वर भी क्या है। वह तो देहधारी की याद हो गई, ये तो पतियों का पति है, उनको याद करना है। कोई कहते हैं हमको निष्ठा में बिठाओ, पहले शुरू शुरू में योग शब्द नहीं कहते थे, उस समय कहते थे निष्ठा। तो बाबा कहते हैं उस समय कहते थे निष्ठा, तो कहते थे कई कहते थे हमको निष्ठा में बिठाओ, मीन्स योग में बिठाओ। तो बाबा बता रहे हैं कोई कहते हैं हमको निष्ठा में बिठाओ, परंतु इससे क्या होगा, किसी को जाके बिठा दिया बाबा ने, बाबा को याद करो, लेकिन बुद्धि से वो नहीं करेगा तो फायदा तो क्या होगा, परंतु उससे क्या होगा। 10 मिनट यहाँ बैठते हैं तो ऐसे मत समझो कि कोई एक रस हो बैठते, कोई 10 मिनट बैठते, कोई आधा घंटा बैठते, कोई घंटा बैठते, तो बाबा कहते ऐसे थोड़ी कि एकदम एक रस हो के बैठते, फिर भी बुद्धि इधर भटकती है ना। तो बाबा कहते हैं 10 मिनट यहाँ बैठते हैं तो भी ऐसे मत समझो कि कोई एक रस हो बैठते हैं। भक्ति मार्ग में किसकी पूजा करने बैठते हैं तो बुद्धि इधर उधर भटकती। भक्ति में भी देखते हैं ना क्या होता है, पूजा करेंगे घर की याद आएगी, बच्चे की याद आएगी, कारोबार की याद आएगी। यहाँ पर भी कई बार ऐसा होता है, योग में बैठेंगे ना जो बात भूली वो याद आ जाती, फिर कोई काम करना वो भी याद आ जाता है। तो बाबा समझ जाते हैं एक रस तो कोई नहीं बैठता है ना, तो इसलिए बुद्धि तो इधर उधर भटक ही जाती है। तो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में किसकी पूजा करने बैठते हैं तो बुद्धि बहुत भटकती रहती है। नोदा भक्ति करने वालों की यही तात लगी रहती है कि हमको साक्षात्कार हो, ये आश लगाकर बैठे रहते हैं, एक की लगन में लवलीन हो जाते हैं, तब साक्षात्कार होता है, उसको कहा जाता है नोदा भक्ति। इतनी मेहनत करते हैं, पूरा टाइम बैठे रहते हैं, प्रण करके बैठे रहते हैं, क्या क्या करते हैं, तब भी थोड़ा साक्षात्कार हुआ, बाबा कहते फिर भी फायदा तो कुछ नहीं होता है ना। तो बाबा कहते उनको कहा जाता है नोदा भक्ति। वह भक्ति ऐसे है जैसे आशुक माशुक, खाते पीते बुद्धि में याद रहती है, उनमें विकार की बात नहीं होती। अब बाबा बताए आशुक माशुक क्या है, चलते फिरते कुछ भी काम करेंगे एक दो के शरीर को याद करते, लेकिन उनमें विकार की बात नहीं है, लेकिन उसको याद करते रहते हैं। लेकिन बाबा कह रहे हैं उनमें विकार की बात नहीं होती है, शरीर पर प्यार हो जाता है, एक दो को देखने बिगर रह नहीं सकते हैं। अब तुम बच्चों को बाप ने समझाया है कि मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, कैसे तुमने 84 जन्म लिए हैं। फिर बाबा एक बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, बाबा कहते हैं बीज को याद करने से सारा झाड़ याद आ जाता। अब पतियों को याद करते रहे, गिनती करते रहो, कुछ करते रहो, बीज मुख्य जड़ है, मेन है, बीज को याद करने से, बाबा को याद करने से सारा सृष्टि चक्र का ज्ञान आ जाता है। बीज को याद करने से सारा झाड़ याद आ जाता है, ये वैरायटी धर्मों का झाड़ है ना, ये सिर्फ तुम्हारी बुद्धि में है। कौन सी बात, भारत गोल्डन एज में था, अब आयरन एज में, हालांकि भारत ने अभी इतनी प्रोग्रेस कर ली है, बहुत कई फील्ड के अंदर आगे बढ़ता जा रहा, लेकिन फिर भी तो कहेंगे ना आयरन एज है, और यही फिर गोल्डन एज बनेगा। अब आयरन एज में है, ये अंग्रेजी अक्षर अच्छे है, कौन से गोल्डन आयरन, बाबा उसको बता रहे हैं, इनका अर्थ अच्छा निकलता है, आत्मा सच्चा सोना होती है, फिर उसमें खाद पड़ती है, अभी बिल्कुल झूठी हो गई, पहले एकदम सच्चा सोना थी, फिर धीरे धीरे विकारों की खाद पड़ी, अब तो आत्मा की हालत क्या हो गई है, अब बिल्कुल झूठी हो गई है। इसको कहा जाता है आयरन एज। आत्माएं आयरन एज होने से जेवर भी ऐसा हो गया। आत्मा पतित बनी तो शरीर भी वैसा ही मिलता है। कई बार आकर के ब्राह्मण क्या कहते हैं, क्या करे शरीर ऐसा है, ये हो रहा वो हो रहा, तो ये तो कई जन्मों का हिसाब किताब है। आत्मा के पतित होने से शरीर को कुछ न कुछ तो लगा ही रहता है। तत्व भी तमो प्रधान है, आत्मा भी पतित है, तो कुछ न कुछ होता है। कई बार क्या बच्चे क्या करते आएंगे, कहेंगे बाबा को पूछो ये मेरे को बीमारी लगे, बाबा क्या बताएंगे। बाबा को तो पता है ना कि कई जन्मों का हिसाब किताब है और वो हिसाब किताब इस समय चुप्त हो रहा है, इसलिए बाबा पक्का कराते हैं कि बच्चों को ध्यान देना है, आत्मा को शक्तिशाली बनाओ। ये छोटे छोटे हिसाब किताब जो आते हैं वो भी धीरे धीरे हल्के होने लगते हैं। तो बाबा एक बहुत राज बता रहे हैं, आत्मा सच्चा सोना होती है, फिर उसमें खाद पड़ती है, अभी बिल्कुल जूठी हो गई है, इसको आयरन एज कहा जाता है। आत्मा आयरन एज होने से जेवर भी ऐसा हो गया है। अभी बाप कहते हैं मैं पतित पावन हूँ, मुझे याद करो। तो मुझे बुलाते हो ना कि हे पतित पावन आओ, मैं कलप कलप आकर तुमको एक युक्ति बतला दूं। कौन सी युक्ति? कि मुझे याद करो। मन मना भव मध्याजी भव अर्थात स्वर्ग के मालिक बनो। मुझे याद करो और स्वर्ग के मालिक बनो। कोई कहते हैं हमको योग में बहुत मजा आता है, ज्ञान में इतना मजा नहीं, बस योग करके ही भागेंगे। अब समझ आते ना, जो योग में जिनको मजा आता है वो ज्ञान में नहीं आता, तो आत्माएं कौन सी है, दूसरे धर्म की है, तो वो योग करेंगी, अपना योग से शक्ति लेती है अपने, फिर दूसरे धर्म में जाकर के अपने धर्म में जाकर के अच्छा पद पाएंगे। तो बाबा कहते हैं, कोई कहते हैं हमको योग में बहुत मजा आता है, ज्ञान में मजा नहीं, बस योग करके ये भागे, योग ही अच्छा लगता है। कहते हैं हमको शांति चाहिए। अब उनको कुछ भी कहो ना, कहेंगे योग में कई विदेशों में चले जाओ, दूसरे दूसरे धर्म की आत्माएं ना वहाँ सेंटर्स पर आते हैं और वो आकर के सेंटर्स पर आधा घंटा योग करेंगे, घंटा आकर के योग करते हैं और बहुत अच्छे अच्छे अनुभव करके जाते हैं, क्योंकि वो दूसरे धर्म की आत्माएं हैं, वो योग के द्वारा बहुत शक्ति लेकर के जाते हैं। तो बाबा तो कहते हैं ना सबको आना तो यही है, हट्टी एक है, आएंगे जरूर। ज्ञानी तो आत्मा ज्ञान और योग पे ध्यान देंगे और दूसरे लोग जो हैं वो योग पे ज्यादा ध्यान देंगे। तो बाबा कहते हैं, कहते हैं हमको शांति चाहिए। अच्छा बाप को तो कहां भी बैठकर याद करो, याद करते करते तुम शांति धाम में चले जाएंगे। इसमें योग सिखलाने की बात ही नहीं है, बाबा को याद करना है, योग क्या सिखलाना है, बाप को याद करना है। ऐसे बहुत हैं जो सेंटर्स पर जाकर आधा पौना घंटा बैठते जाते हैं, योग करते हैं, और कई तो जो ज्ञानी आत्मा हो तो ज्ञान भी सुनते हैं, लेकिन योग कोई ऐसे हैं जो केवल योग करते हैं। कहते हैं हमको निष्ठा कराओ, या तो कहेंगे बाबा ने प्रोग्राम दिया है निष्ठा का, शुरू में निष्ठा शब्द कहते थे ना उसमें पूछते थे, क्योंकि उस समय क्या नए नए थे तो बाबा बच्चों को ध्यान खिंचवाते थे, बच्चे योग के टाइम एक टाइम पर योग करो, बैठो संगठन में योग करो, और जिनको केवल योग ही अच्छा लगता था वो पूछते थे बाबा ने कोई प्रोग्राम दिया है योग करने का। अरे योग करने का प्रोग्राम देना है क्या, बाप को याद करना तो प्रोग्राम क्या देना है। तो बाबा कहते हैं ऐसे बहुत तो जो सेंटर्स पर जाकर आधा पौना घंटा बैठते हैं, कहते हमको निष्ठा कराओ, निष्ठा मीन्स योग कराओ, या कहेंगे बाबा ने प्रोग्राम दिया है निष्ठा का, निष्ठा मीन्स योग का। यहाँ बाबा कहते हैं चलते फिरते बाप की याद में रहो, ना से तो बैठना अच्छा है, कोई नहीं बैठ सकते कोई नहीं कर सकते, तो बाबा कहते अगर चलते फिरते नहीं कर सकते तो बैठ करके भी करना, दोनों का बैलेंस रखना है, चलते फिरते भी करना है और बैठ करके भी बाबा को याद करना है। आदत ये डालनी चाहिए, आदत ये डालनी है कि काम काज करते बाप को याद करना है, इसमें बड़ी मेहनत है। बुद्धि घड़ी घड़ी और तरफ भाग जाती है, भक्ति मार्ग में भी बुद्धि भाग जाती है तो फिर अपने को चुटकी काटते। ब्रह्मा बाबा हमेशा अपना अनुभव सुनाते थे, जब मैं भक्ति करने बैठता था बुद्धि कभी इधर उधर जाती थी, चुटकी में ऐसे अपने आप को पकड़ते, मुंह को पकड़ना, तो बाबा ऐसे अपना ध्यान खिंचाने के लिए करते थे। तो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में भी बुद्धि भाग जाती है फिर अपने को चुटकी काटते हैं। सच्चे भगत जो होते हैं उनकी बात करते हैं, तो यहाँ भी अपने साथ ऐसी ऐसी बातें करनी चाहिए। बाबा को याद क्यों नहीं किया? साकार में भी बाबा ने अपना, शिव बाबा की प्रवेशता से पहले भी ब्रह्मा बाबा ने अपना कितने अच्छे अनुभव सुनाए। तो बाबा कहते थे क्यों मैं भूल जाता हूँ, फिर अपने दरबार लगाते थे ये राजा, फिर कौन मंत्रियों से पूछते थे बुद्धि इधर क्यों गई। तो बाबा कहते हैं बाबा को क्यों नहीं याद किया? याद नहीं करेंगे तो विश्व के मालिक कैसे बनेंगे? आशुक माशिक तो नाम रूप में कैसे फंसे रहते हैं? यहाँ तो तुमको अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। हम आत्मा इस शरीर से अलग हैं, शरीर में आने से कर्म करना होता है। बहुत ऐसे हैं जो कहते हैं हम दीदार करें, बहुत थे कहते अभी भी कई कहते हम साक्षात्कार करें। बाबा कहते कर लो साक्षात्कार, लेकिन उससे क्या प्राप्ति होगी? उससे कुछ प्राप्ति तो नहीं होगी, केवल एक सेकंड की खुशी होगी हमने देखा। लेकिन बाबा कहते वैसा बनना है ना, तो बाबा कहते हैं बहुत ऐसे हैं जो कहते हैं हम दीदार करेंगे। अब क्या दीदार करेंगे? बाबा कहते क्या दीदार करना है? फिर बाबा कहते हैं वह तो बिंदी है ना। अच्छा कोई कहते हैं श्री कृष्ण का दीदार करें, श्री कृष्ण का तो चित्र भी है ना, आप चित्र भी वही देखेंगे वही साक्षात्कार में देखेंगे। तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण का चित्र भी तो है ना, वो जड़ है सो फिर चैतन्य में देखेंगे। इससे फायदा क्या हुआ? फायदा तो कुछ नहीं है ना, बनना है हमको, पुरुषार्थ करना है। साक्षात्कार से थोड़ा फायदा होगा क्या? साक्षात्कार से थोड़ा ही फायदा होगा। तुम बाप को याद करो तो आत्मा पवित्र हो। तो बाबा क्या कहते हैं, तुम बाप को याद करो तो आत्मा पवित्र हो। नारायण का साक्षात्कार होने से नारायण थोड़े बन जाएंगे। अब किसका साक्षात्कार किया वैसे थोड़े बन जाएंगे, वैसा बनने के लिए पुरुषार्थ करना है। अब नारायण का साक्षात्कार होने से नारायण थोड़े बन जाएंगे। तुम जानते हो हमारी एम एंड ऑब्जेक्ट ही है लक्ष्मी नारायण बनने की, परंतु पढ़ने बगैर थोड़े बन सकेंगे। स्कूल में भी बच्चा समझता है कि मेरे को ये बनना है, पढ़ाई करेगा तब तो बनेगा ना। तो बाबा कहते एम एंड ऑब्जेक्ट है लक्ष्मी नारायण बनने की, पढ़ने बगैर तो बन नहीं सकते हैं। तुम जानते हो हमारी एम एंड ऑब्जेक्ट ही है लक्ष्मी नारायण बनने की, परंतु पढ़ने बगैर थोड़ी बन सकेंगे, पढ़कर होशियार बनो। अब बाबा क्या कह रहे हैं, पढ़कर होशियार बनो, प्रजा भी बनाओ तब लक्ष्मी नारायण बनेंगे, नहीं तो दूर चले जाएंगे। बाबा ने कहा ना कि लक्ष्मी नारायण बनना है तो वैसे ही संस्कार धारण करने पड़ेंगे, लक्ष्मी नारायण की राजधानी में बिल्कुल उनके समीप में होंगे। पढ़कर होशियार बनो, प्रजा भी बनाओ तब लक्ष्मी नारायण बनेंगे। मेहनत है ना, पास फिर ऑनर होना चाहिए, जो धर्म राज की सजा भी ना मिले। ये मुर्गी बच्चा भी साथ है। अब जब धर्मराज की बैठता है तो बाबा के साथ कौन बैठता है? शिव बाबा के साथ ब्रह्मा बाबा बैठते हैं। तो बाबा कहते मुर्गी बच्चा मीन्स बहुत लाडला, तो ये मुर्गी बच्चा भी साथ है। ये भी कहते हैं, अब देखो बाबा बच्चों को क्या कह रहे हैं कि बच्चों के अंदर उमंग उत्साह बढ़ा रहे, कभी दिल शिकस्त न हो जाए। तो ब्रह्मा बाबा बच्चों को क्या कहते हैं, ये भी कहते हैं तुम तीखे जा सकते हो। बाबा के ऊपर तो कितना बोझा है, सारा दिन कितने ख्यालात करने पड़ते। बाबा को कितना होता, बच्चे आने वाले हैं उनके रहने का, साकार में बाबा बहुत ध्यान दे, बच्चे आने वाले हैं उनके रहने का प्रबंध करना, उन जगह भी छोटी थी, स्थान भी छोटा और सब जगह सब चीज लिमिट में थी, लेकिन बाबा ऐसा प्रबंध करते थे लगता भी नहीं था कि ये कोई लिमिट में है। बाबा का जो प्रबंध होता था इतना जबरदस्त होता था कि थोड़ी चीज में भी इतना लगता था कि बहुत सारा है। तो बाबा बता रहे हैं, तो बाबा कहते हैं, ये भी कहते तुम तीखे जा सकते हो। बाबा के ऊपर तो कितना बोझा है, बाबा के ऊपर बोझा नहीं था, लेकिन बाबा क्यों बता रहे हैं, बच्चों को समझाने के लिए कि बाबा को भी कितना करना पड़ता है, बच्चों को तो कुछ भी नहीं करना है, ये सारा दिन कितने ख्यालात करने पड़ते हैं, हम इतना याद नहीं कर सकते। अब बताओ बाबा ऐसे कर, बाबा बच्चों के लिए कह रहे, बाबा जितना याद करता था और कोई इतना कर भी नहीं सकते हैं, हम इतना याद कर नहीं सकते हैं। भोजन पर थोड़ी याद रहती है फिर भूल जाते हैं। बाबा ये क्यों बता रहे हैं, बच्चों को पक्का कर रहे हैं कि बच्चे भोजन करते समय बाबा को याद करें। समझता हूँ बाबा और हम दोनों सैर करते, अब ब्रह्मा बाबा बता रहे हैं कि जब हम याद करता हूँ तो हर समय ये रहता है कि मैं शिव बाबा के साथ सैर करता हूँ। ब्रह्मा बाबा कितनी अच्छी अच्छी बातें सुनाते थे, तो आज बाबा बता रहे हैं, समझता हूँ बाबा और हम दोनों सैर करते हैं, सैर करते करते बाबा को भूल जाता हूँ। बाबा को भूलेंगे कैसे, बाबा को तो याद रहता था, लेकिन बाबा को ऐसी बातें, रमणीक बातें बता रहे हैं ताकि बच्चे भी समझे कि हमको क्या करना है। सैर करते करते बाबा को भूल जाता हूँ, खिसकनी वस्तु है ना, अब बाबा की याद खिसकनी होती है ना, जो तिलकनी होती है ऐसे रखो तो ऐसे एक सेकंड बच्चे इधर से इधर हो जाते, खिसक जाते, क्योंकि बाबा भी तो बिंदी है ना शिव बाबा, खिसकनी वस्तु है ना, घड़ी घड़ी याद खिसक जाती है, इसमें बहुत मेहनत है, याद से ही आत्मा पवित्र होनी है, बहुतों को पढ़ाएंगे तो ऊंच पद पाएंगे, जो अच्छा समझते हैं वह अच्छा पद पाएंगे, अच्छा समझते हैं पढ़ाएंगे अच्छा पद पाएंगे। प्रदर्शनी में कितनी प्रजा बनती है, तुम एक एक लाखों की सेवा करेंगे, फिर कोई भी प्रोग्राम रखते हैं ना, प्रदर्शनी में भी लाखों आते थे, अभी तो कुंभ के मेले में लाखों तो क्या करोड़ों आ रहे हैं, करोड़ों को भी बाबा का संदेश मिल रहा है। तो बाबा कहते हैं तुम एक एक लाखों की सेवा करेंगे, फिर अपनी भी अवस्था ऐसी चाहिए, सेवा से पहले अपनी अवस्था भी ऐसी चाहिए, कर्मातीत अवस्था हो जाएगी फिर शरीर नहीं रहेगा। आगे चल तुम समझेंगे, अब लड़ाई जोर से हो जाएगी, फिर ढेर तुम्हारे पास आते रहेंगे। अभी देखते ना चारों तरफ वातावरण ऐसा है तो लोगों को लगता है कि कुछ मिले तो आते रहते हैं, तो बाबा कहते जैसे हालातें बिगड़ेंगी उतना ही बाबा के पास आएंगे। आगे चल तुम समझेंगे, अब लड़ाई जोर से हो जाएगी तो ढेर तुम्हारे पास आते रहेंगे, महिमा बढ़ती जाएगी, अंत में सन्यासी भी आएंगे, वो बाप को याद करने लग पड़ेंगे, ज्ञान नहीं सुनेंगे, वो योग को पसंद करेंगे, अंत में सन्यासी भी आएंगे, बाप को याद करने लग पड़ेंगे, उनका पाठ ही मुक्ति धाम में जाने का है, नॉलेज तो लेंगे नहीं, तुम्हारा मैसेज सभी आत्माओं तक पहुंचना है, अखबारों द्वारा भी बहुत सुनेंगे। बाबा के टाइम पर तो अखबारों की बात होती थी, टीवी आदि की तो बात ही नहीं थी, तो अभी तो टीवी के द्वारा भी बहुत सुनते रहते ना, तो बाबा कहते हैं अखबारों द्वारा बहुत सुनेंगे, कितने गांव हैं, सबको पैगाम देना है, मैसेंजर पैगंबर तुम ही हो। बाबा थोड़ी जाएंगे एक एक को मैसेज देने के लिए। बाबा तो कहते हैं मैं बच्चों को ही भेजता हूँ, बाबा मैसेज हमको देते हैं। फिर बाबा ने बच्चों को टाइटल दिया कि मैसेंजर पैगंबर तुम ही हो, पति से पावन बनाने वाला और कोई है नहीं सिवाय बाप के। ऐसे नहीं कि धर्म संस्थापक किसको पावन बनाते, धर्म संस्थापक क्या करते हैं, भले किसी को पावन भी बनाएंगे वापिस नहीं ले जा सकते, वो अपने धर्म का वृद्धि करते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि धर्म संस्थापक किसको पावन बनाते हैं, उनका तो धर्म तो वृद्धि को पाना है, वे वापिस जाने का रास्ता कैसे बताएंगे, धर्म को बढ़ाना है उनको, वापिस थोड़ी जाना है। सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है, तुम बच्चों को अब पवित्र जरूर बनना है, बहुत हैं जो पवित्र नहीं रहते हैं, काम महाशत्रु है ना, अच्छे अच्छे बच्चे भी गिर पड़ते। बाबा कहते देखो माया कितना बड़ा अटैक करती है, अच्छे अच्छे बच्चे भी गिर पड़ते हैं, कुदृष्टि भी काम का ही अंश है, ये बड़ा शैतान है। अब आप बता रहे हैं क्या विकार कितना बड़ा शैतान है, क्या हालत कर देता है, ये बड़ा शैतान है। बाप कहते हैं इस पर जीत पहनो तो जगत जीत बन जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार, पहला है काम काज करते याद में रहने की आदत डालनी है, बाप के साथ जाने व पावन नई दुनिया का मालिक बनने के लिए पवित्र जरूर बनना है। काम काज करते बाप की याद में रहने की आदत डालनी है, बाप के साथ जाने व पावन नई दुनिया का मालिक बनने के लिए पवित्र जरूर बनना है। दूसरा ऊंच पद पाने के लिए बहुतों की सेवा करनी है, बहुतों को पढ़ाना है, मैसेंजर बन ये मैसेज सभी तक पहुंचाना है। वरदान स्नेह की गोद में आंतरिक सुख व सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। स्नेह की गोद में आंतरिक सुख व सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। जो यथार्थ पुरुषार्थी हैं, अब बहुत अच्छा बाबा ने बताया ना, कई बार पूछते ना पुरुषार्थ कैसे करें, तो बाबा कहते जो यथार्थ पुरुषार्थी हैं वे कभी मेहनत या थकावट का अनुभव नहीं करते, सदा मोहब्बत में मस्त रहते, कभी भी मेहनत और थकावट का अनुभव नहीं करते, सदा मोहब्बत में मस्त रहते हैं, वह संकल्प से भी सरेंडर होने के कारण अनुभव करते कि हमें बाप दादा चला रहे हैं, मेहनत के पांव से नहीं लेकिन स्नेह की गोदी में चल रहे हैं, स्नेह की गोद में सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होने के कारण वह चलते नहीं लेकिन सदा खुशी में आंतरिक सुख में सर्व शक्तियों के अनुभव में उड़ते रहते हैं। स्लोगन निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः होता है। निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः होता है। अव्यक्त इशारा है एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। अनेकता में एकता, तो प्रैक्टिकल में अनेक देश, अनेक भाषाएं, अनेक रूप रंग, लेकिन अनेकता में भी सबके दिल में एकता है ना, क्योंकि दिल में एक बाप है। सभी धर्मों के, सभी देशों के भाई बहने हैं, लेकिन सबके दिल में क्या है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, क्योंकि दिल में एक बाप है। एक श्रीमत पर चलने वाले हो, अनेक भाषाएं होते हुए भी मन का गीत, मन की भाषा एक है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अभी हमारे बीच में डबल विदेशी भाई बहनों का आना भी आरंभ हो चुका है। हमारे बीच में डॉक्टर कला बहन बैठी है। डॉक्टर कला, आप मिलेंगे, हाथ खड़ा करें। डॉक्टर कला बहन तो न्यूयॉर्क में पीस विलेज का सारा मोहिनी बहन के साथ वहाँ की सब सेवाओं को देखती हैं। इस बार पांडव भवन में दो दिन के लिए रहे हैं, आपसे मिलेंगे, और बहुत प्यार से सेवाएं करती हैं वहाँ विस्तार में है। सावी बहन भी बैठी है। सावी बहन टोरंटो से कनाडा के कई सेंटर्स, मेन टोरंटो सेंटर को देखती है। सावी बहन रेज योर हैंड। मंजू बहन और भी कई बैठे हैं। सभी डबल विदेशी भाई बहनों के लिए ताली बजाएं। वेलकम ऑल द डबल फॉरेन सिस्टर्स एंड ब्रदर्स आर रिक्वेस्टेड टू रेज योर हैंड। काफी सारे यहाँ बैठे हैं, बाबा के लाडले हैं, स्पेन से भी हैं, रशिया से भी बैठे हैं, बहुत प्यार से सेवा करते हैं। अब इनकी मीटिंग है, मीटिंग के लिए आए हैं। मीटिंग तो शांतिवन में, लेकिन दो दिन के लिए बाबा के घर में रहना है, बाबा के घर में रहना है। वेलकम, बाबा आपका बहुत स्वागत करते हैं। अभी हम बाबा की याद में बैठेंगे, उसके बाद डबल विदेशी भाई बहने बैठे रहेंगे, उनको सारे दिन का प्रोग्राम बताया जाएगा। नाउ विल सिट इन बाबा'स रिमेम्बरेंस एंड आफ्टर दैट ऑल द डबल फॉरेन सिस्टर्स एंड ब्रदर्स विल स्टे बैक एंड टुडेज प्रोग्राम विल बी अनाउंस्ड एंड आई विल ऑल्सो चेक हु आर लीविंग टूडे टू शांतिवन फॉर एनसीसी मीटिंग एंड हु आर लीविंग टूमोरो, सो आई विल चेक विद दैट ऑल्सो। ओके, अभी हम बाबा की याद में बैठेंगे।